سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے آفٹر اللہ رب العالمین اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پہ کس کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ ہمارے ماں باپ ہیں. کون لوگ ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہیں. اور آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں, آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں, صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا. صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا. جن پر لٹا چکا ہوں میں دنیا کی دولتیں, جن پر لٹا چکا ہوں میں دنیا کی دولتیں, ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا, ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا. میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو, میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو, میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. ایک بار میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اور کچھ دن پہلے جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے بھی کچھ شعر کہے تھے کہ میری ماں پیاری ماں پھول مجھ کو دیے کانٹے خود بھر لیے, پھول مجھ کو دیے کانٹے خود بھر لیے. میں نیند کا لحاف اوڑے سوتی ہی رہی, تو سارے کام جھاڑو برتن دھوتی ہی رہی. بن کے امید تیری آنکھوں میں میں پلتی ہی رہی. کانٹوں میں پھول کس طرح پلتے ہیں, خزاں میں پھول کس طرح کھلتے ہیں, تیرے خیال سے دل کس طرح مہکتے ہیں, تیرا سوچتے ہی غم کس طرح سے دھلتے ہیں. پاس رہ کے بھی کیوں بات نہیں سنتی تھی. بہت دفعہ جیسے ایکو ہوتا ہے نا کہ والدین آواز دیتے ہیں کہ دیکھنا دروازہ نوک ہوا ہے, کون ہے, دیکھنا فون کی گھنٹی بج رہی ہے, دیکھنا اوون پہ کچھ رکھا تو نہیں ہے. سوچتے ہیں امی نے اوروں کو کیوں نہ آواز دی, ابو اوروں سے کیوں نہیں کہتے یا چاہتے. پاس رہ کے بھی کیوں بات نہیں سنتی تھی, بعد میں یہ سوچ کر پچھتائی بہت. ہر صورت میں تیرے چہرے کا گماں ہوتا ہے, ہر آواز پہ تیرے بلانے کا گماں ہوتا ہے, ہر آہٹ پہ تیرے آنے کا گماں ہوتا ہے. اور ہم میں سے بہت خوش قسمت ہیں جن کے گھروں میں ان کے والدین ہیں, ان کے بزرگ ہیں, دادی دادا, نانی نانا, یا پھر اپنے والدین, یا پھر شوہر کے والدین, یا پھر بہو کے والدین, یا پھر داماد کے والدین. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی میرے حصے میں ماں آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, بس ایک ماں ہی ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی. میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا, مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زندہ ہے ماں میری, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से चलती हूँ, दुआ भी साथ चलती है। मेरी बहनों, माँ के आगे कभी यूं खुलकर नहीं रोना। माँ के आगे कभी खुलकर यूं नहीं रोना। जहाँ बुनियाद हो, इतनी नमी अच्छी नहीं होती। आपके दुख मेरे दुख, आपके गम मेरे गम, आपकी परेशानियाँ मेरी परेशानियाँ, आपके आंसू मेरे आंसू। वालदैन बुनियादें हैं। जब वो हमारे आंसू देखते हैं, हमारा उतरा हुआ चेहरा देखते हैं, जब वो परेशान होते हैं, तो फिर क्या होता है कि बुनियादों में जब पानी चला जाता है हमारे गम को, जब वो अपना गम बना लेते हैं, तो फिर वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते, वो ज़्यादा देर जी नहीं सकते, खुश नहीं रह सकते। फिर बीमारी, फिर ब्लड प्रेशर का हाई होना, फिर हार्ट अटैक का होना। मेरी बहनों, माँ के आगे कभी यूं खुलकर नहीं रोना। जहाँ बुनियाद हो, इतनी नमी अच्छी नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो बस रो देती है। जब वो बहुत गुस्से में होती है तो फिर क्या होता है कि वो रो देती है। मेरे और आपके वालदैन, मेरे और आपकी जन्नत, ये एक ऐसी हस्ती हैं जिसका दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं, कोई नेमुल बदल नहीं। इनका प्यार सावन की झड़ी की तरह, जिसकी हर बूंद से प्यार का अमृत टपकता है। ये ऐसी ठंडी छांव हैं कि ऐसी ठंडी छांव आज तक दुनिया में किसी दरख्त ने नहीं दी। ठंडी मीठी सुहानी छांव, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं दीने इस्लाम के बाद। इस्लाम के बाद, कुरान के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बाद, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये घरों की रौनक है, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है, ये घरों की जीनत है, ये जिंदगी के नशेबो फराज में एक महकता हुआ जो है वो फूल है। ये एक ऐसी बहार है कि उनकी एक एक अदा जो है वो मुझे और आपको खुशबू देती है। उनका एक एक अमल जो है वो मेरे और मुझे और आपको मुअत्तर करता है। जिन्होंने मेरे और आपके लिए ये जो है वो नमूना पेश किया कि ऊद जब जलता है, ऊद का पौधा, ऊद की लकड़ी जब वो जलती है तो उससे खुशबू निकलती है। जो मेरे और आपके गमों को अपने दिलों में समेटे हुए, मेरे और आपके पास उदास नहीं होते, रोते नहीं कि कहीं मैं और आप जो हैं परेशान ना हो जाएं। तो मेरी प्यारी बहनों, दुनिया में आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर अगर किसी का हक है, सबसे ज़्यादा, सबसे अहम, सबसे नाजुक, और वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद हमारे बिलव्ड वालदैन का। आफ्टर अल्लाह रब्बुल आलमीन अवर क्रिएटर, उसके बाद एंड हिज मैसेंजर, तो ये है मेरे और आपके वालदैन का। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर अपने बाद जो है वो किसका जिक्र किया, मेरे और आपके वालदैन का जिक्र किया। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं तो ये बात कह रहे हैं कि देखो बेटा, शिर्क ना करना, कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके साथ ही के वालदैन के साथ उसने सुलूक करना। सूरत अल बकरा देख लीजिए, सूरत अल अनाम देख लीजिए, सूरत बनी इसराइल को हम देख लें, वक़द्दा रब्बुका अल्ला तअबुदू, और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया। क़द्दा का मतलब क्या होता है, जैसे काजी कोई रूल पास कर देता है ना, कोई भी किसी मुल्क की कोई कोर्ट जब एक रूल पास कर देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रूल होता है। तो इस पूरी कायनात का खालिक, क्रिएटर, हाकिम, रूलर, उसने ये रूल पास कर दिया, उसने ये कानून बना दिया रहती दुनिया तक, वकदा, और फैसला कर दिया, कोई रियायत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और वो क्या है? रब्बू का, तेरे रब ने, वो तेरा रब जिससे तुमने वजूद लिया, एक हकीर सा नुतफा पल भर कर जमीन की पूरी कुव्वत, हवाओं की पूरी कुव्वत, कायनात की पूरी कुव्वत, सूरज की तमाजत, उसकी गर्मी, तो जिसने मुती किया, जिसने हुक्म दिया सूरज की गर्मी को, हवाओं को, मिट्टी की नमी को, पानी को, हर चीज को ये हुक्म दिया कि ये जो इंसान है इसकी खिदमत में जो है मसरूफ हो जा, तो वो हकीर सा नुतफा जो कि माँ के रहम में जब ठहरता है तो कायनात की नेमतों से मुस्तफीद होता हुआ एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो ये सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके लिए मुसख़्खर कर दी। वो रब जिसने सारी कायनात बनाई और खूबसूरत बनाई, खूब सजाई, कहा कि देखो मैं खालिक हूं, मुझे पहचानते रहना, मैं हूं तुम्हारा क्रिएटर, तो तुम्हें क्या बनना है? मखलूक बनकर रहना है, मखलूक बनकर रहना है। मैं हूं तुम्हारा रूलर, मैं हूं तुम्हारा हाकिम, मैं हूं तुम्हारा किंग, तुमने मेरी जो है वो महकूम बनकर रहना है, तुमने मेरी रियाया बनकर रहना है, तुमने मेरा मुती बनकर रहना है। और रब रबूबियत, रबूबियत के लिए इस्तेमाल होता है कि हकीर सा नुतफा जिसे जीता जागता जो है वो इंसान जो के पहाड़ों पर जो है वो पहाड़ों को मुसख्खर करता है, जो जमीन के सीने को छेद करता है, जो आसमानों पर जो है वो जाना चाहता है, चांद सितारे, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतनी सलाहियतें, इतनी नेमतें अता की कि देखें कि चंद फुट का इंसान कहां कहां जो है वो तरक्की करके जो है वो पहुंचा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, यानी कि सारी चीजें मैंने तेरे लिए, तुझे तुझे दी, तेरे लिए पैदा की, लेकिन एक बात याद रखना है इंसान, कि तू मेरे लिए, खुदाई तेरे लिए, बस तू मेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए, तेरा दिल मेरे लिए। तो उस दिल को, उस चंद फुट के इंसान को, मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बात कही कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, के हम नहीं इबादत करेंगे, अल्लाह ताबुदू के तुम इबादत ना करना मगर उसी की, कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। और इबादत जो है वो क्या है, या बंदा खुदा बन या बंदा जमाना, इबादत क्या है कि फिर सरे नियाज झुकाया तो फिर उठा ना सके, मेरी नजर में वही सर है, सर आमिर, जिसे जमाना काट तो डाले मगर झुका ना सके, ऐसा सर जो ना दबता है, ना झुकता है, ना बिकता है, सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह के आगे जो है ना वो झुकता है। और इबादत किसे कहते हैं, इबादत किसे कहते हैं कि अपनी मैं को खत्म कर देना। और इबादत किसे कहते हैं, वो सर जो किसी के आगे नहीं झुकता, वो अल्लाह के आगे झुकता रहे, वो दिल जो ख्वाहिशात से भरा रहता है उसमें अल्लाह, वो अल्लाह की मोहब्बत की अमाजगाह बन जाए। एक दफा कोई जो था वो गया कि मैं जाकर जो है वो फलां किसी के बारे में सुना कि वो बहुत नेक हैं, वो तो बहुत पहुंचे हुए हैं, तो वहां पे जाकर उनके उनके पास रहकर जो है वो दीन को सीखते रहे। तो कुछ दिन के बाद वो वहां से वापस आने लगे, तो उन्होंने पूछा कि तुम मेरे पास से वापस जो है वो क्यों जा रहे हो? कहने लगे कि मुझे आप में कोई करामत नहीं नजर आई। अब्दुल्ला बिन मुबारक थे जिनके पास वो ठहरे हुए थे, कहा कि मैंने आपके बारे में सुना बहुत था पर कोई ऐसी अजीब नई चीज नजर नहीं आई। उन्होंने कहा अच्छा मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी जिंदगी में कोई अमल तुम्हें कुरान और सुन्नत के खिलाफ भी नजर आया? कहा कि नहीं। कहा जा, अब्दुल्ला बिन मुबारक की करामत यही है। तो करामत क्या है आज के इस दौर में, करामत क्या है? क्योंकि कुरान और सुन्नत को जिंदा कर दें, उसको सच्चा कर दें, उसके गुलाम बन जाए। उसके मुती बन जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको क्या पैगाम दिया कि मैं और आप अल्लाह की बंदगी करें ज़िंदगी के तमाम मामलात में, हर रूप में, बेटी के तौर पे भी, माँ के तौर पे भी, बीवी के, बहन, हमसाई, बहू, सास, दोस्त, कोई भी रिश्ता है, इसी तरह यानी हर मुसलमान हर शोबे में, यानी हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये इबादत तो बड़ी आसान है कि मैं किसी से मिलती ही नहीं, मैं तो जो है मैंने तो मिलना ही छोड़ दिया ताकि मैं हिफाजत कर सकूं अपनी ज़बान की, मैंने तो जंगलों में घर बना लिया, मैं राहिबा बन गई, मैं राहिब बन गया, क्योंकि मुझसे गलतियां ना हो जाएं, मुझसे गुनाह ना हो जाएं, जो लोगों के दरमियान रहता है और उसकी तरफ से पड़ने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, उनको सहता है, उन पर सब्र करता है, उसको जन्नत के वस्त में घर मिलेगा, जन्नत के मिडल में घर मिलेगा। और ये बिलविड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हदीस है जिससे पता चलता है कि जन्नत के वस्त में घर मिलेगा। रिश्तों को निभाना, रिश्तों को जोड़ना, और बहुत आसान है कतार रहमी कर लेना, बहुत आसान है मुंह अपने को बसोर लेना, मुंह को फुला लेना, ना मिलना, फोन ना उठाना, दरवाजा ना खोलना, कोई माफी मांगे तो फिर उसको माफ ना करना, अपने नफ्स को मोटा करते रहते हैं। फिरौन की खूबी क्या थी? वो अकफरुल काफिरीन था, सबसे ज्यादा इनकार करने वाला था। कहीं आज ऐसा तो नहीं कि मैं और आप भी हर नमाज की हर रकत में हर रोज ये पढ़ते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, के अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। लेकिन मेरी और आपकी इबादत कैसी इबादत है? मेरे और आपके ये बोल कैसे बोल हैं? ये कैसा वादा है? हर नमाज की हर रकत में हर रोज करते हैं, सुबह शाम करते हैं, लेकिन अपने इस वादे को फिर कितना निभाया? मईशत हमने हिंदुओं से ले ली, सियासत हमने जो है वो दुनिया से ले ली कि जमहूरियत का दौर है, और इसके अलावा जो है हमारा जो लेन देन है मईशत वो हमने यहूदियों से ले ली, हिंदुओं से, यानी कल्चर, तहजीब, कुछ चीज़ें हमने मग़रिब से ली, कुछ हमने मशरिक से ली, कुछ ख़ानदान के रस्म व रवाज लिए, और कुछ अपने दिल की बातें कि मेरा दिल ये कहता है। कितनी दफ़ा मैं और आप ये कहते हैं, कितना मैं और आप ये सोचते हैं कि मेरा रब क्या कहता है, आज उसका हुक्म क्या है कुरान में, और जब मैं मिलूंगी तो मुझे क्या कहेगा, व्हाट विल अल्लाह से, हम कहते हैं व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल पीपल से, तो लोगों को हमने खुदा बना लिया। और अल्लाह कुरान में क्या कहता है कि मैंने ये फैसला कर दिया था, कोई रियायत नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी, ये मेरा डिसीजन था, मैं फाइनल अथॉरिटी हूं, और मेरा डिसीजन क्या था कि तुम अल्लाह की बंदगी करना, इल्ला इय्याहू, उसी की, जैसे ही नहीं, यानी और बाकी सारी चीजों पे क्रॉस है, बस उसी की, और उसके अंडर जिसकी आएगी, उसके हुक्म के अंदर जिसकी आएगी, और उसमें सबसे पहले इंसानों में जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है, वह बिल वालिदैनी एहसाना, कि वो हमारे वालदैन हैं, और उनके साथ ये नहीं कहा कि उनका ख्याल रख लिया करो, उनको कभी कभी पूछ लिया करो, कभी कभी उनकी खबर ले लिया करो, अपने पैसों में से अगर बच जाए, कोई सेविंग हो जाए तो उन पर खर्च भी कर दिया करो, कभी कभी उनको कॉल भी कर दिया करो, कभी कभी उनको मिलने भी चले जाया करो, ये नहीं कहा, बल्कि कहा एहसान के दर्जे का उनके साथ सुलूक करना। फिर फरमाया इम्मा यबलुगन इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उन दोनों में से दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, यानी वो बूढ़े हो जाएं, तो यानी ये एहसान के दर्जे, एहसान किसे कहते हैं, अब उसकी तफसीलात बताई जा रही हैं, चंद अहम असूल बताए जा रहे हैं, तो उसमें एक क्या है, फला तकुल हुमा उफ, तो पहली चीज क्या है कि उनको उफ नहीं कहना, दूसरी बात क्या है, वला तनहर हुमा, और उन दोनों को डांटना मत, उन दोनों को झिड़कना मत, उन दोनों के साथ गुस्सा ना करना, और तीसरी चीज के बल्कि उनके लिए दुआ करते रहना, वकुल लहुमा, और उन दोनों के लिए कहते रहना, कुल ऑर्डर का, फिर ऑर्डर का सीगा है यहां पे, जो भी बातें कही गई हैं सब में ऑर्डर का सीगा है कि ये करना है ये नहीं करना। और फिर क्या दुआ पढ़नी चाहिए, सब मिलकर पढ़ते हैं माशाल्लाह, सब मिलके पढ़े, एक दफा फिर पढ़ते हैं, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फिर तुम उन दोनों के लिए कहते रहना क्या, कौलन करीमा, करम वाला कौल। और करम जो है अरबों के हाँ अंगूर को भी कहते हैं, अंगूर की बेल को भी कहते हैं। और अंगूर जो है अरबों के हाँ अंगूर कसीरुल मुनाफे फल है, जिसमें बहुत ज्यादा फवायद है। वो उसकी अपने बागों के गिर्द दीवार भी बनाते थे, बाड़ के तौर पे रखते थे, वो उससे शराब भी बनाते थे, वो उससे जूस भी बनाते थे, वो उससे वो फ्रूट के तौर पे भी उसको यूज़ करते थे। उनका जो कारोबार था वहाँ के मौसम में बहुत अच्छे वो अंगूर जो थे वो चलते थे, तो उनके यहाँ बागों के बाग होते थे। और शराब की तो उनके यहाँ हंड्रेड्स में अकसाम थी ना, तो किसी को जब वो कहना चाहते थे ना कि वो बहुत नफ़ा देने वाला है, वो बहुत सखी है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत मेहरबान है, वो बहुत जुदो करम करने वाला है, तो कहते थे कि जो है वो हाजा करीम। मर्द के लिए क्या कहते हैं कि वो करीम है। इसीलिए अहले मक्का ने जो है वो वही बात कही थी जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कही थी कि आप करीम हैं, करीम के बेटे हैं। और फिर आगे आगे करीम करीम का लफ्ज़ वहां पे इस्तेमाल किया गया, माफ कर देने वाले, सिला रहमी करने वाले, हुस्न सलूक करने वाले, प्यार करने वाले, और बड़े बड़े मुजरमों को माफ कर देने वाले। और यानी तो करीम का लफ्ज़ करम करना बहुत वुस्सत के मानी में उनके यहाँ इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे क्या है कि वालदैन के लिए करीम बात कहना, करम वाली बात कहना, तो इसमें बहुत वुस्सत है, बहुत वुस्सत है। और फिर क्या करना, वख्फिद लहुमा जनाह जुल्ली, और जो है वो झुका कर रखना अपना जनाह, किसे कहते हैं, एक कंधे को, और जनाहैन दो कंधे, या जनाहान दो कंधे। और जुल जो है जैसे कोई बहुत आजिज और मिस्कीन हो, जैसे बहुत झुके हुए कंधे, जैसे जो अपने आप को बड़ा समझता है वो यूं अकड़ अकड़ के तन तन कर चलता है, जो अपने आप को मिस्कीन आजिज समझता है तो अपने कंधे झुका कर रखता है। कंधे झुका कर रखने का क्या मतलब है कि ग्राउंड टू अर्थ, जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाने, ग्राउंड टू अर्थ। गाड़ी में बाजुकात मैं ये चाहती हूँ कि फ्रंट सीट मुझे मिले, अगर मैं ग्राउंड टू अर्थ हूँ तो मैं सोचूंगी कि अच्छा फ्रंट सीट, अगर इसमें हमारे साथ जो जा रहे हैं कोई बूढ़ा तो नहीं है, और दूसरे को मैं ऑफर करूंगी, राइट। अच्छा फिर मैं क्या चाहती हूँ, अच्छा फ्रंट सीट तो नहीं मिली गाड़ी में जब हम मिलकर जा रहे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ साइड वाली सीट तो एटलीस्ट मुझे मिले ना। अब मैं बीच में कैसे बैठूं, एक टांग एक तरफ और दूसरी टांग दूसरी तरफ, कितनी मुश्किल होती है ना। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, जो बेस्ट सीट है ना मुझे मिले, बेस्ट खाना मुझे मिले, हर चीज में। मैं और आप अपने नफ्स, मेरा और आपका नफ्स बहुत मोटा है, चाहती हूँ लोग शाबाश दें, लोग तारीफ करें, लोग प्यार करें, लोग आगे झुक के मिले, सबसे पहले मुझे सलाम करें। तो ये जो होते हैं ना जो अपने कंधे झुका कर रखते हैं, उनकी मैं खत्म हो जाती है, वो मैं हर बात में मैं नहीं करते। जैसे बकरी मैं करती है ना, उसकी आवाजें आती रहती हैं, और आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक मेरी और आपकी गुफ्तगू में मैं कितनी होती है। कुछ लोगों पे जो है वो आजमाइशें गुजर जाती हैं, तूफान आते हैं, आंधियां चलती हैं, जिंदगी आजमाइशों में घिरी हुई है, बड़े बड़े उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, लेकिन वो मैं नहीं करते। मैंने अगर कुछ किया तो मैं कहती हूँ मेरे बहन भाई माने इस बात को कि मैंने अम्मी के लिए ये किया है, अम्मी बीमार थी, मैंने उनको बेड लेकर दिया था जो ऊपर नीचे होता था, मैंने उनको नौकरानी लगवा के दी थी, जो मेड थी जो उनकी खिदमत करती थी, मैं उनको मंथली पैसे भेजती थी। अगर अब्बू बीमार हैं तो मैंने अब्बू का महाना मुकर्रर किया था। तो मैं कहती हूँ कि मेरे भाई मानते क्यों नहीं है, इनको मानना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, दुनिया को भी मानना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और हम अपने बच्चों को भी कहते रहते हैं मैंने आपके लिए क्या किया, हम वालदैन को कितना कहते हैं कि मैंने आपके लिए क्या किया। तो मेरी प्यारी बहनों, जनाह जुल, कंधों को झुकाना, आजिज और मिस्कीन बनना, मुती होना और अपनी मैं ख़त्म कर देना, ये बहुत ऊंचे दर्जे का जो है ना वो अखलाक है, आला दर्जे का जो है वो अखलाक है। दरख्त को जब फल लगता है ना, आपने देखा कि दरख्त को जब फल लगता है, दरख्त झुक जाता है, उसकी टहनियाँ नीचे को झुकी हुई होती हैं, और जो फलदार दरख्त होते हैं पत्थर भी उन्हीं को लगते हैं, जिनके ऊपर फल नहीं होता ना, बच्चे उन पर पत्थर नहीं मारते। आप कहती हैं मैंने इतना किया और फिर भी लोग मुझे इतना कहते हैं, ये तो होती आई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर फिर कौन करेगा? उनका अखलाक, उनका किरदार, उनका उसवा। मेरे हाथों से खुशबू जाती ही नहीं, मेरे होंठों से खुशबू जाती ही नहीं, मेरे हाथों ने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, उनका किरदार, उनका अखलाक, वो ग्राउंड टू अर्थ थे। तो जिंदगी के आम मामलात में गंदे कंधे झुका कर रहना, किसी को पता ना चले कि आप कितने तालीम याफ्ता हैं, आप कितने अमीर हैं, आपका घर कितना बड़ा है, आप कौन हैं, ये मेरी और आपकी पहचान नहीं है कि डिग्री बड़ी है, घर बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, मियाँ की तनख्वाह बहुत अच्छी है, आपके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, और सेम फॉर मी ऑल्सो, यानी जो बातें मैं आपको कह रही हूँ वो मेरे लिए भी है। तो असल चीज़ क्या है कि मेरा और आपका अखलाक कैसा है, मेरे और आपके मामलात कैसे हैं, जहाँ गए वहाँ पे एक जहाँ छोड़ आए, किसी के आंसू पोंछ लिए, किसी को कुर्सी दे दी, किसी के गिलास में पानी डाल दिया, बेल हो रही है दरवाजे के लिए, बहुत से हम सब बैठे हैं, बहुत से लोग, अब हम बैठे हुए सब सीटें फिल हैं, कोई एक आता है, अब वो सोचते हैं कहाँ बैठूं, जगह नहीं है, तो कम से कम अपने सरों को हरकत तो दे सकते हैं ना, अपनी गर्दन, कि गोया के जो आने वाला है उसको हम फील करवाएं कि हमारे पास, हमारे दिलों में आपके लिए बड़ी जगह है। जगह हिल नहीं सकते आप, बिल्कुल पहले ही फिट हैं, गाड़ी के अंदर पायलप हो गए आप, लेकिन एटलीस्ट सर की जुम्बिश दिलों की वुस्सत का इजहार करती है कि यू आर मोस्ट वेलकम। इसी तरह तो ये जिंदगी के तमाम मामलात में जनाह जुल, आजी मिस्कीनी के साथ, तवाजो के साथ अपने कंधों को झुका लेना। और यहां पे आगे फरमाया मिनर रहमा, रहमत के साथ। रहमत जो है हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, ब्लेसिंग, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने रहम का जिक्र किया। रहम जो है ना यूट्रस को कहते हैं, माँ का पेट का वो हिस्सा जिसमें बच्चे की पैदाइश की इब्तदा होती है। अब आप देखें कि यहाँ पे कहा कि जिस तरह जो है माँ के यूट्रस में बच्चा जो है वो परवान चढ़ता है, उसकी वहाँ पे इब्तदा होती है, तो वहाँ से रहम का लफ्ज़ जो है वो लिया गया है। तो आप सोच लें कि माँ कितनी रहीम होती है, माँ कितनी शफीक होती है, कितनी मेहरबानी करने वाली होती है। इसी तरह वालिद भी, उसकी मेहनत, उसकी मुशक्क़त, उसका खून पसीना एक करना। और मेरी भतीजी डॉक्टर बन गई, तो उनको जब पहली तनख्वाह आई तो उसने अपनी वालिद के लिए जोड़ा ख़रीदा, वालदा के लिए ख़रीदा, सास के लिए ख़रीदा, ससुर के लिए ख़रीदा। तो मेरे लिए तो मैंने कहा मेरा तो बनता नहीं, तो कहने लगी कि फूफो पहली दफ़ा एहसास हुआ है मुझे अपने अब्बा जान का कि वो कपड़े क्यों नहीं बनाते थे। फूफो मेरी सारी तनख्वाह दूसरों के जोड़ों में, यानी जो ये सारे बता रही हैं उसके जोड़ों में ख़त्म हो गई, और फूफो मेरे लिए जो है ना पैसे ही नहीं बचे कि मैं भी अपना जोड़ा, अपने लिए जोड़ा खरीदती। मैंने सोचा था जब तनख्वाह लूंगी ना फिर मैं इतने कपड़े बनाऊंगी ना, लेकिन जब मेरी तनख्वाह आई तो मेरा दिल चाहा कि मैं सबके लिए, मतलब सबके लिए करूं। उसकी सास मेरी नंद भी हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे लिए बनाया जाए। तो बहरहाल मैं तो यहाँ ही थी, किसी के हाथ जैसे आ गया आप मना भी करें तो, लेकिन कहने लगी पहली दफ़ा मुझे अपने वालिद की खिदमत का, उसकी मेहनत का जो है वो एहसास हुआ। और मेरे वो भाई जो हैं कुछ देर हो गई उनकी डेथ हो गई, तो उनका बेटा कहता है कि मेरे वालिद कितना मोटरसाइकिल पर रहते थे, वो कितनी मेहनत करते थे, वो ज़मीनों को देखते थे, वो काम करते थे, मुझे अफसोस है इस बात का कि उनकी ज़िंदगी में मैंने उनकी कदर ही ना की, मैं उनको उस तरह समझा ही ना कि मेरे वालिद। तो ये मेरा और आपका सबका जो है वो हाल है। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वालदैन के लिए रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। जैसे आप देखें, कभी आपने महसूस किया कि जब आप चल रही हो तो माँ बाप कितनी मोहब्बत से आपकी तरफ देखते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, मैं शादी के बाद गई तो जेवर जुवर नहीं पहना हुआ था, तो कहा कि मतलब जेवर क्यों नहीं पहनती ना, क्या तुम खुश नहीं हो? मेरी बड़ी बहन जो थी थर्ड डिलीवरी पे डेथ हो गई, उनका पहला बेटी 1 साल की, दूसरी बेटी 2 साल की। जब थर्ड डिलीवरी का टाइम था तो हार्ट अटैक हुआ, या क्या, रमजान का महीना था, गर्मी का मौसम, पंजाब की गर्मी और फैसलाबाद की, तो हमारे पास आई हुई थी। और मिशन हॉस्पिटल में कार्ड और चेकअप और सब चीज़ें, तो उनको जाना था डॉक्टर के पास, तो बहरहाल फ़ौरन ही डेथ हो गई। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा ये पहला बेटा अब जो फौत हो गया, मोहम्मद अहमद उसका नाम है, अभी 1 साल पहले उसका भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं भी अम्मी के पास चली गई, मियाँ मेरे बहरेन थे। तो मैंने एक दिन फजर की नमाज़ पढ़ के मैं लेटी हुई थी, तो ऊपर छत पर, तो मैंने महसूस किया कि जैसे मेरे चेहरे के पास किसी की सांसें हैं। तो मैंने कहा कि पता देखा तो अब्बा जान थे, तो मैंने कहा अम्मी अब्बा जान क्या कर रहे थे? कहने लगी कि बेटा परवीन की डेथ हो गई थी ना, वो तुम्हारी तुम्हें देख रहे थे, तुम सोई वो कहीं तुम्हें सांस आ रही है। वो ये देख रहे थे, महसूस कर रहे थे कि तुम ठीक हो, जो आपकी सांसें चेक करते हैं, जो आपके चेहरे को देख, चेहरे को पढ़ते रहते हैं किताब की तरह। मुझे कभी ये बात ना भूली, जब भी मुझे ख्याल आता है, मैं कहती थी मेरा वालिद मेरी सांस को देख रहा था, उस महसूस कर रहा था कि मैं जिंदा हूं। तो मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं मेरे और आपके वालिद? उन्होंने मेरे और आपके लिए क्या क्या किया, और मैंने और आपने उनको कितना महसूस किया। वो हमें महसूस करते हैं, जो अच्छा ताल्लुक होता है ना, जबान खोल कर नहीं किसी को कहा जाता है कि मेरे लिए ये कर दो, मैं आपसे ये चाहती हूं। उनकी बहुत सी हमारे वालदैन की भी ख्वाहिशात हैं, हमें हमारी ख्वाहिशात वो बिना कहे पूरी करते थे, बिना कहे पूरी करते थे ना। आज वो बोलते रहते हैं, आज वो कहते रहते हैं, हमें लगता है बस आवाजें दे रहा है, कोई देता रहे, है ना। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अपने रहमत के कंधे जो है ना, इनके आगे झुका दो। वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अल्लाह से ये दुआ करते रहो कि ए मेरे रब, मेरे इन वालदेन दोनों पर रहम फरमा, जैसे बचपन में इन्होंने मुझे मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पाला। हकीकत क्या है कि वालदैन के बारे में मेरा दिल चाहता है ये कहूँ, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन वालदैन किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। मैं वालदैन के नाम ये कहूँ, जिनाजे पे इनके लिख देना दोस्तों, जिनाजे के इन पे लिख देना बहनों, जिनाजे के इन के लिख देना भाइयों, मोहब्बत करने वाले ये जा रहे हैं, मोहब्बत करने वाले ये जा रहे हैं। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत, और हमारा हाल क्या है कि नफ़रतों से दिल भरे हुए हैं। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत, मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। तो मेरे वालदैन, आपके वालदैन, जिनके बारे में अल्लाह ने यह फैसला कर दिया कि इनके साथ हुस्ने सुलूक करना, जिनकी जिंदगी, जिनकी कुर्बानियां, जिनकी मेहनतें, जिनके उठे हुए हाथ कहते रहे, मेरे और आपको ये पैगाम देते रहे कि मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर। और वो इंतज़ार में आंखें बिछाए बिछाए रहते थे जब वो जिंदा थे, और जिनके आज जिंदा हैं, आप महसूस करते होंगे कि वालदैन कहते हैं कि हम इंतज़ार में आंखें बिछाए रहते हैं, इन्हें हमेशा ही आने में देर लगती है। किसको देर लगती है? औलाद को, जिसका वो इंतज़ार करते हैं। दरवाज़ा पहले खुला रखते हैं कि बच्चा आएगा, फिर उसकी टैक्स आ जाता है, फिर उसकी कॉल आ जाती है कि मेरी पार्टी है, हम फलां जगह जा रहे हैं। कहते अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, और फिर फोन बंद करके वो पता भी नहीं चलने देते कि वो रो रहे हैं कि बेटा मैं तो सुबह से तुम्हारे लिए ये बना के बैठी थी, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वाल्डेन ये कहते हैं, ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। मोहब्बत करो या नफरत, हक अदा करो या ना, अपनी दुनिया बसा ली है, अपनी दुनिया में मसरूफ हो, हम ताल्लुक निभाना जानते हैं। तो असल बात यह है कि आज तालीम बहुत है, आज इल्म बहुत है, आज तकरीरें बहुत हैं, आज बातें बहुत हैं, आज कोर्सेज बहुत हैं, एक के बाद दूसरा कोर्स, एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, एक सेमिनार के बाद दूसरा सेमिनार। लेकिन याद रखिएगा, कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। और आज की औलाद का हाल क्या है, जब गर्ज हुई तब पूछ लिया, जब वक्त मिला तब याद किया, अब और हकीकत क्या लिखूं इस दोस्त के मुखलिस बच्चों की, इस दौर के मुखलिस बच्चों की और हकीकत क्या लिखूं। आइए देखते हैं कि मेरे और आपके वालदैन, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने हुकूक दिए हैं, तो ये जो एहसान के दर्जे की नेकी है, कहा कि इनके साथ एहसान के दर्जे की नेकी करना, इसका मतलब क्या है। बहुत सी आयात हैं, बहुत सी हदीस हैं, बहुत से अकवाल हैं। मैं आपसे पूछूं तो मुझे ऐसे लगेगा कि आप आके यहां पे बैठे, आप में से हर एक को बहुत पता है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाती, इसलिए कि आपको सबको पता है, बेशुमार वालदैन के साथ जो एहसान के दर्जे की नेकियां हैं। कि एक मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने वालदैन की तरफ जो है वो मोहब्बत की एक नज़र डालो तो हज मबरूर का सवाब मिलेगा, ऐसा हज जो कि कबूल हुआ हुआ। सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं 100 बार नज़र डालूं, तो कहा कि 100 हज मबरूर का सवाब मिलेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा कि मन असबहा मुतियन फी वालिदैही, कि जो शख्स मुती है अपने दोनों वालदैन के लिए और इस हाल में उसने सुबह की, तो उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले हुए हैं। अगर 2 जिंदा हैं और अगर दोनों में से 1 जिंदा है तो जन्नत का 1 दरवाजा खुला है। और उसने अगर सुबह की इस हाल में वह अन ज़ुलमा हु, और उसने ज़ुलमा हु यानी नून तस्निया का गिर चुका है, और वह अन ज़ुलमा हु और उसने जुल्म किया अपने वालदैन पर, उनके साथ उसने सलूक नहीं किया, उनका ख्याल नहीं किया, तो उसने इस हाल में सुबह की कि उनके लिए जहन्नुम के 2 दरवाजे खुले हैं। अगर 2 हैं जिंदा तो 2 दरवाजे खुले हैं, और अगर 1 है तो 1। और वालदैन शोहर के हों या वालदैन मेरे हों या आपके हों, तो याद रखिएगा कि वालदैन राजी हैं या कि हमसे खुश हैं। तो यानी अगर उन्होंने इस हाल में सुबह की कि वो अताअत करने वाले हैं तो जन्नत के 2 दरवाजे खुले हैं, और अगर उन्होंने उनकी नाफरमानी की तो उनके लिए जहन्नुम के 2 दरवाजे खुले हैं। एक सहाबी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन ज़ुलमा मा, कि अगर वालदैन ने जुल्म किया, कोई ज्यादती की हो, फिर भी आपने 3 दफा फरमाया कि अगर उन्होंने ज्यादती की हो तब भी, अगर तुमने उनका कहना ना माना, अगर तुमने उनको नाराज कर दिया, तो तुम्हारे लिए जहन्नुम के 2 दरवाजे खुले हुए। हमारा दिल चाहता है ना कि कोई हमें वेलकम करे, दरवाजा खोल कर वेलकम करे, तो जहन्नुम वेलकम करने के लिए तैयार है, उसके 2 दरवाजे चीख उसके 2 दरवाजे चीख रहे हैं, धाड़ रहे हैं और बुला रहे हैं कि ऐ वालदैन की नाफरमानी करने वालों, ऐ उनको नाराज करने वालों, तो मेरी तरफ तो आओ। फिर एक हदीस में आपने फरमाया कि रदल्लाहु, अल्लाह की रदा जो है मा रदा अल वालदैन, यानी मा रदल वालदैन के वालदैन की रजा के साथ है, और फरमाया वसखतुल्लाही, और अल्लाह की नाराजगी जो है वो क्या है, वालदैन की नाराजगी के साथ है। अल्लाह राजी तो क्या है कि यानी अगर अल्लाह राजी कैसे होगा, वालदैन की अताअत करेंगे, और वालदैन राजी तो फिर अल्लाह राजी। एक आदमी था, जब उसकी वफात का वक्त आया तो उसकी ना जान नहीं निकल रही थी, उसकी रूह ही नहीं निकल रही थी, लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कलमा पढ़ें, और मतलब मुख्तलिफ तरीके से, तो किसी ने कहा कि बिलविड प्रॉफिट का ज़माना था कि उनके पास जाएं और बताएं। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या उसकी वालदैन में से कोई ज़िंदा है, तो कहा कि हाँ इसकी माँ ज़िंदा है। और लोगों ने बताया कि वो तो नाराज़ है, मतलब बातचीत आपकी हुई हदीस का निचोड़ क्या है कि कहा कि वो तो नाराज़ है, कहा कि उसकी माँ को कहो कि उसको माफ़ कर दे। लोग माँ के पास गए, माँ ने कहा मैं तो नहीं माफ़ कर सकती। बड़ा नाफरमान था, बड़ा दुख दिया इसने, बड़ी मुझे आज़ारी दी, बड़ी तकलीफ़ दी, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती। तो जो रूह नहीं निकल रही थी, तो वालदा की उसके लिए बददुआएं, और जो वालदैन वालदा के साथ उसने सलूक किया था। फिर लोग प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फिर इस तरह। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब लकड़ियां जलाओ, लकड़ियों को आग लगाओ और फिर उसमें उसको डालो। तो अब ये बात जब माँ को बताई गई तो बर्दाश्त न कर सकी, कहा कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। यानी वालदेन को राज़ी करना, वालदेन का दिल ना दुखाना। और इस सिलसिले में जैसे एहसान के दर्जे में जो चीज़ें आती हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है वो ये फरमाते हैं कि वालदेन के साथ हुस्ने सुलूक क्या है, कि तुम उनके सामने अपने कपड़े मत झाड़ो कि कहीं कपड़ों का गुबार और धूल उनको ना लग जाए। यानी अपने कपड़े उनके सामने मत झाड़ो, कहीं आपके कपड़ों की जो गर्द मट्टी या कोई चीज जो है उनके ऊपर उड़कर ना चली जाए। और अगर उनके कपड़े फिर गंदे हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके कपड़े गर्मियों में सर्दियों वाले हैं, सर्दियों में गर्मी वाले हैं, या उनको जो उनकी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, हम घर बहुत खूबसूरत बनाते हैं, एक मेरा मास्टर बेडरूम है, एक मेरे बेटे का है, एक मेरी बेटी का है, एक प्ले रूम है, एक स्टडी रूम है, और वालदैन का हम एक कमरा तक भी नहीं रखते। उनको कहते हैं वालदैन कहाँ जाएंगे, बेसमेंट में जाएंगे। वालदैन की तो हफ्ते बाद या 2 महीने बाद बारी आएगी, है ना? और जब उनकी बारी का टाइम होता है तो हम पे खुशी होती है या नागवारी होती है। यानी बाज बच्चों ने अपने वालदेन की ड्यूटियां बारियां मुकरर की हुई हैं कि 1 महीना एक के पास, 1 महीना एक के पास, 1 महीना एक के पास। तो एक माँ रोने लगी, कहने लगी मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो मतलब यानी उनके लिए एटलीस्ट जब हम घर लें या जो भी मेरा घर है उनका एक कोना मुकरर करना चाहिए कि ये मेरी वालदैन की जगह है, वो मेरे हो या मेरे शोहर के वालदैन हो। और फिर मुंह बसौर लेना और उनको वक्त पे चाय ना देना और उनका ख्याल ना रखना और कहना ये बूढ़ी कब मेरी जान छोड़ेगी, ये बूढ़ा कब मेरी जान छोड़ेगा, ये खांसता है, ये मेरे बच्चे। यानी बाज लोगों को देखा कि अपने बच्चों के दादी दादा से अपने बच्चों को दूर रखते हैं। यानी बहू जो है वो अपने बच्चों को दादी दादा के करीब नहीं आने देती, वो उनकी तरबियत खराब कर देंगे। तुम्हारे शोहर की तो तरबियत की उन्होंने, जिसकी वजह से इतने बड़े महल के अंदर हम रह रहे हैं, इतनी अच्छी तनख्वाह है, इतनी गाड़ियां हैं। यानी जिसके साथ मैंने शादी की, जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारी, उसकी तो तरबियत उन्होंने बहुत अच्छी की। अब मेरे बच्चों की तरबियत जो है ना वो खराब हो जाएगी। तो मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, इसी तरह मेरे वालदैन हों या मेरे शौहर के वालदैन हों, जन्नत हैं। उनका दिल ना खराब करें, उनका ख्याल रखें, उनके साथ हुस्ने सलूक करें। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह नो की इस बात से मैं इतनी देर बैठकर इस पे सोचती रही कि इतनी देर मैं बैठकर सोचती रही कि उन्होंने कहा कि अपने कपड़े भी उनके सामने मत झाड़िए। और अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक आदमी आया, उसने सवाल पूछा कि मैं खरासान से आया, मैंने अपनी वालदा को अपने कंधे पे बिठाया और मैं खाना काबा तक पहुंचा। यानी मैं अपने वजूद की अपनी अपनी सवारी उसको दी, जैसे एक सवारी होती है ना, तो मैंने कंधों पे उठाकर पहुंचा यहाँ पे, मैंने उसको हज करवाया और तवाफ करवाया, तो क्या मैंने उसका जो है वो हक अदा कर दिया? कहा कि नहीं, कहा कि नहीं। यानी कहीं आता है कि वो जो दर्दे ज़ै है, तूने तो उसका बदला भी नहीं दिया जो माँ ने तुम्हें पेट में उठाए रखा 9 माह। फिर इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो अल्लाह की मुलाकात को गए तो अर्श के साए के नीचे एक शख्स देखा, बड़ी अच्छी हालत में, बड़े मुतासिर हुए कि मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर रश्क आ गया। पूछा अल्लाह ताला, ये बंदा जो है इसका इसकी इतनी अच्छी हालत क्यों है, इसका इतना अच्छा मकाम क्यों है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि इस बंदे के अंदर तीन चीजें जो थी ना वो नहीं थी जब दुनिया में ये जिंदा था, जब अमल करता था। नंबर एक, दूसरों को अल्लाह ने इससे बढ़कर जो नेमतें दी थी, जो आसाइशें दी थी, ये कभी उनसे हसद नहीं करता था, हसद नहीं करता था। मेरा आपका हाल तो ये है, उसके कड़े देखे तो उदास हूं, उस ये सोफा देखा तो उदास हूं, ये फूलों की डेकोरेशन देखी और किसी को हसीन देखा कि वाह क्या हुसन है भाई इसका, इसकी बहू देखती रह जाए, और इसकी बहू का कद देखे और उसका दामाद देखे, अरे वाह कितना अच्छा दामाद इसको मिल गया है, हाफिज भी है और डॉक्टर भी है, और कैसी अच्छी गाड़ी इसको मिल गया, कैसे आपने ली ये सब कुछ, कैसे किसने रिश्ता करा दिया, क्या हुआ। फिर कहते हैं कि अच्छा मेरे नसीब ही फूट गए। फिर कहते हैं कि इस मेरा मेरी बेटी का नहीं हुआ तो फिर इसकी बेटी का क्यों हुआ, मेरे बेटे को दाखला नहीं मिला तो फिर इसके बेटे को क्यों मिल गया। क्या करते हैं, हसद करते हैं। और सगी बहन से नफरत करती है और हसद करती है, सगा भाई सगे भाई से हसद करता है। मैं दूसरों की बात नहीं कर रही, दूसरे दोस्तों के साथ हो सकता है कभी मुस्कुराहट भी हम दे देते हों, जितने करीबी रिश्ते हैं उनके साथ उतना ही मेरा और आपका ताल्लुक खराब है। दुनिया में जन्नती हैं वो लोग जो कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करते हैं, उनके साथ अच्छा मामला करते हैं, क्योंकि असल जो अखलाक और किरदार है ना वो करीबी लोगों से पता चलता है। बाहर तो थोड़ी देर की स्माइल सभी पास कर लेते हैं, वो तो काफिर भी करते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं है उनका अखलाक। स्वीटी हनी माई डार्लिंग हेलो हाय मे आई हेल्प यू राइट। लेकिन मेरा और आपका हाल क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया कि वो हसद नहीं करता था। दूसरी बात क्या है कि वालदैन की नाफरमानी नहीं करता था। तीसरी बात क्या है कि वो चुगलखोरी नहीं करता था। तो मेरी प्यारी बहनों, इसी तरह मुजाहिद, ये भी तफसीर जो है इन्होंने तफसीर कुरान की है, ये भी जो है ताबईन तबा ताबईन में से ये लोग हैं, ये कहते हैं अगर वालदैन बूढ़े हो जाएं और तुम्हें उनका पेशाब धोना पड़ जाए तो भी उफ मत कहा करो कि वो बचपन में तुम्हारा पेशाब पखाना धोते थे। दुनिया में किसी के एहसान का बदला देना चाहिए ना। मुझे कोई एक पेन देता है ना, मैं कहती हूँ अच्छा अब मैं उसको क्या दूँ। मुझे कोई जो है वो कुर्सी देता है तो मैं थैंक यू करती जो है ना, थकती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा, मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, उसने मेरे पर ये किया है ना, और अब वालदेन के एहसानात का बदला दुनिया में देना। और याद रखिएगा जब वो हमें धोते थे, जब वो हमें प्यार करते थे, तो मैं और आप गोश का लोथड़ा थे जो उनकी गोद में थे। मैं और आप क्या थे, गोश का लोथड़ा थे और हम उनकी गोद में थे। अच्छा उन्होंने हमारा जब पेशाब और पखाना धोया, उन्होंने जब हमें जो है वो खुश्क बिस्तर पर लिटाया और खुद गीले पे लेटे, उन्होंने जब वो रत जगा किया, ना तब पैंपर थे, ना तब रोशनियां थी, ना तब गैस थी, ना तब वो सहूलतें थी, कितनी कुर्बानियां उन्होंने की, वो हम मैं और आप उम्मीद बनकर उनकी आंखों में जीते थे। वो ये दुआएं करते थे कि इनको बड़ा करना, इनको लायक करना, इनको बहुत तरक्की देना, और मैं और आप अपने बूढ़े वालदैन की जो खिदमत करते हैं, जो अब आज वो हड्डियों का ढांचा है, वो हम गोश का लोथड़ा थे, वो हड्डियों का ढांचा है। फर्क क्या है, हम इस उम्मीद पर उनकी खिदमत करते हैं कब मरेंगे, कितने दिन तक। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो बीमार भी हैं, वो बूढ़े भी हैं, और वो मतलब मेरे पास रहें। क्योंकि एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि जब उनके वालदैन में से कोई एक फौत हुआ तो रोने लगे। किसी ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं, आपने तो इतना सब कुछ किया। कहा कि आज मेरा एक जन्नत का दरवाजा जो है ना बंद हो गया है, आज मेरे लिए दुआएं करने के लिए जो हाथ उठते थे ना वो हाथ जो है वो उठ गए हैं। मेरी वालदा का इंतकाल कोई 1.5 साल 2 साल पहले हुआ है, और वालदैन सबके सभी से बहुत प्यार करते हैं, वो भी सबसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो मेरा सबसे छोटा भाई है सिद्दीक, यानी वो उसने जवानी में भी कहा था कि अब्बा जान जैसे कैडेट्स को पढ़ाते थे सऊदीया में भी रॉयल एकेडमी को, तो ज़्यादातर सामान बाहर से आता था, फ्रिज कपड़े, चीज़ें, फर्नीचर, बर्तन, क्रॉकरी 70s में अब्बा जान बाहर थे सऊदीया में, इसी तरह वो जॉर्डन में भी रहे, तो बाहर से चीज़ें बहुत सी, जैसे आज तो हम बाहर ही रहते हैं, उस ज़माने की बात। तो बातें करते करते उसने कहा कि जब तकसीम होगी, जब चीज़ें बटेंगी, तो कोई तो फ्रिज उठाएगा, कोई टीवी उठाएगा, कोई वॉशिंग मशीन उठाएगा, मैं अपनी माँ को उठाऊंगा, मैं अपनी जन्नत जो है ना उसको लेके जाऊंगा। और सारी जिंदगी, जैसे दोनों भाई भी बाहर चले गए गल्फ में, मतलब माशाल्लाह सबने बहुत खिदमत की, दोनों तीनों भाभियों ने, तीनों भाइयों ने, सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप का वक्त गुजरा। लेकिन वो सारी जिंदगी बाहर भी ना गए, उसी घर में रहे जहाँ पे माँ थी, और मतलब बहुत उनके आगे बोलते ही नहीं थे, और यानी ऐसी खिदमत, ऐसी अतात। तो मेरी, जब वो घर से निकलते थे ना तो अम्मी के पास आते थे, तो अम्मी उन पे आयतल कुर्सी और दुआएं पढ़कर फूंक मारती थी। और जब उनको अम्मी कहीं भी हैं, बहुत सोशल वर्कर भी थे, बहुत खिदमत खल की है वो इधर उधर। तो देर हो गई तो मेरी बहू, मेरी जो भाभी हैं, अम्मी को कहती, अम्मी से फ़ोन करवाती थी, और उनको फ़ोन करके कहती थी अम्मी बुला रही हैं, तो फ़ौरन घर आ जाते थे। यानी कहते, वो कहती थी कि भी अम्मी का नाम लूंगी, तो फिर तो अम्मी का जब 2 साल पहले इंतकाल हो गया, तो कहती हैं कि मैंने अपने शोहर को कहा, सदीक साहब अब ज़रा संभल के चलिएगा, सदीक साहब अब ज़रा बच कर चलिएगा, अब आपकी वालदा नहीं है जो आपके लिए दुआएं करेगी। किसी का रिश्ता करवा रहे हैं, किसी की सुलह करवा रहे हैं, किसी की बारात के साथ हैं, किसी का फैसला करा रहे हैं, किसी की कुछ मदद, अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर खिदमत खल का जज्बा बहुत था। तो उनकी डेथ पर कुछ लोगों ने कहा कि जैसे पंजाबी में कहते हैं कि सदीक तेनू ते आज कख भी रोंदे ने, जैसे गलियों के अंदर जो तिनके पड़े हुए हैं ना तुम्हें, वो भी रो रहे हैं, क्योंकि जिसकी बेवा यतीम इसकी डिफरेंट। तो मेरी अम्मी की डेथ के 1.5-2 साल के बाद रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। घर के पास निकले थे जुमे के लिए तैयारी करके, तो मुझे अपनी वो भाभी बहुत बहुत रोती हैं, कहती हैं कि मतलब मेरे ऊपर से छत उठ गई जब मेरी सास की, और उसके बाद मैं अपने शोहर को कहती थी, वो बहुत बाहर रहते थे ना, तो इधर उधर, और अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था, यानी मेरे बेटे की डेथ के तकरीबन कुछ देर बाद, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ था, उसकी भी रोड एक्सीडेंट पे डेथ हो गई। तो बहरहाल माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक, उनकी खिदमत, और वो अपनी हर काम, उनको कोई उस, यानी मेरी बड़ी भाभियाँ कहती हैं जब वो उनके बच्चे हुए और वो उल्टी वगैरह कर देते थे तो खाना छोड़ देते थे, उनको इतनी करहत आती थी, लेकिन अपनी माँ बस फिर हर चीज़ उनके लिए करने को। रात जैसे आखिरी है, मेरी अम्मी के जो 2 माह गुजरे तो मैं भी जागती थी, तो वो मेरे साथ आके बैठ के जागते थे, मम्मी की तकलीफ बातें चीज़ें। तो बहरहाल अब ये यानी देखना ये है कि मैं और आप मोहब्बत से करते हैं या नागवारी के साथ करते हैं, या परेशानी के साथ, या सर दर्द होता है कि अब अम्मी के पास भी बैठना पड़ेगा, मेरी पार्टी है, सोशल गैदरिंग है, फलां जगह जाना है, घर में माँ बाप हैं। कितना मेरा और आपका दिल अटका होता है कि मेरा खाना काबा घर के अंदर है, जैसे खाना काबा में दिल होता है ना, कल्बुन मुअल्लक फिल मस्जिद। कितने लोग हैं जो अपनी सोशल गैदरिंग जो है ना उसकी कुर्बानी करते हैं कि घर में माँ बाप है, जन्नत है, वो भी वो चल नहीं सकते, वो जा नहीं सकते। सोसाइटी आम तौर पे बूढ़े लोगों को कट डाउन कर देती है, या उनको इग्नोर करती है, या उनको टाइम नहीं देती, तो क्या मैं और आप भी नहीं देंगे अपनी जन्नत को टाइम? मेरा और आपका दिल भी उनके साथ नहीं लगेगा? दोस्तों के साथ बातें, विंडो शॉपिंग, घूमने जाना, घंटों गीबत करना, चुगली करना, उनके साथ बातें करना इबादत है, उनकी बातें सुनना इबादत है, घंटों उनकी बातें सुने। जब हम छोटे थे हम कहते थे ये क्या है, वो मेरे सुसर, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, बहुत बच्चों को अच्छा प्यार करते थे सबको, बड़े नेक थे मेरे ससुराल वाले, मतलब मेरे सास ससुर, तो कहते थे कि किसी ने एक दफा पूछा, बच्चे ने बाप से पूछा कि अब्बा ये क्या है, उसने कहा कि कव्वा, अब्बा ये क्या है, उसने कहा कि कव्वा। तो बच्चा पूछता रहा और अब्बा जो है वो बताता रहा, फिर एक वक्त गुजरा और उसने कहीं वो लिख कर रखा हुआ था। तो कहते हैं मेरे ससुर कहते हैं कि जब बाप ने उससे कोई सवाल पूछा तो बेटे ने एक दफा बताया, दूसरी दफा फिर कहा अब्बा कितनी दफा मैं आपको बताऊं, अब्बा मैं आपको कितनी दफा बताऊं। तो ये मेरा और आपका हाल है, आज के बच्चे ये समझते हैं कि हम अपने वालदैन से ज्यादा अक्लमंद हैं, हम ज्यादा एजुकेटेड हैं, हमारी ज्यादा अकल है, हम ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन आइए मैं आपको और मिसालें देती हूँ, और ये मिसालें मैं खुद अपने आप को दर्स दे रही थी। मैंने कहा बहुत ही नाजुक टॉपिक है, बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, घर का अंदर का टॉपिक है। मैंने और आपने अपने वालदैन के साथ क्या किया, ये कुर्सी बड़ी मुश्किल है, ये कुर्सी बड़ी मुश्किल है। अगर अल्लाह ने पूछ लिया लिमा तकुलून मा ला तफअलून, तो मेरा और आपका क्या बनेगा। हजरत अली रदी अल्लाह का कौल है कि अगर वालदैन की बेअदबी में उफ से कम दर्जा होता तो अल्लाह ताला उसे भी हराम कर देते। अच्छा, उफ के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं, उनमें से एक कौल क्या है, अल खलील रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो ये हमारा है ना नाखून, इसके अंदर की जो मैल है ना उसको उफ कहते हैं। इतनी हकीर चीज़ है उफ जो वालदैन को नहीं कहनी। नाखून के अंदर कितनी मैल होती है, या नाखून को जब हम काटते हैं तो जो छोटा सा नाखून का हिस्सा गिरता है ये उफ है। और असमई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कानों के अंदर का जो मैल है, वसख वाव सीन खा मैल को कहते हैं, कानों के अंदर का जो मैल है उसको वसखुल उज़ुन, कानों का मैल, और कितना थोड़ा होता है जो उसके अंदर। इसी तरह सालब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कलामतु ज़ुफ्र, वही के नाखून जो है हम जब काटते हैं तो उसके तराशा। इब्नुल अंबारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वालदैन को हकीर समझना, वालदैन को जो है वो उनकी उनको सगीर समझना, छोटा समझना। वो मेरे अब्बा जान एक वाक्या सुनाया करते हैं, कहते हैं कि बच्चा हॉस्टल में पढ़ता था लाहौर में, और कहते हैं कि वालिद ज़मींदार था, वहाँ उसकी ज़रा अमीरों से ज़रा शान और शौकत ऐसे दोस्ती हो गई, पैसे पीछे से आते थे। वालिद आया ऐसे गांव के कपड़े देहात के सीधे सादे से लोग, वालदैन जो जन्नत हैं, वो आया तो अब वो उसको ना शर्म आ रही थी बच्चों को दूसरों को बताते हुए कि ये मेरा वालिद है ना, और उसने बच्चों को ये कह दिया कि ये मेरा नौकर है, और वालिद को पता चल गया। उसने उतार लिया जूता, उसने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ या मैं तुम्हारा कौन हूँ ना। तो बाज़ औक़ात हम अपने वालदैन से ना दूसरों को मिलवाते ही नहीं हैं, ये बोल नहीं सकते, ये देख नहीं सकते, ये खा नहीं सकते, इनका अब दिमाग काम नहीं करता, ये बात रिपीट करते जाते हैं तो हमें शर्म सी आने लगती है। मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बेटा, कहते हैं कि दुनिया में दो रिश्ते ऐसे हैं जो कभी आपसे हसद नहीं करते। एक उस्ताद कब हसद नहीं करते, अगर आप उनसे आगे बढ़ जाएं। एक उस्ताद उनका शागिर्द उनसे अगर आगे बढ़ जाए ना नेकी में अमल में, वो कभी उसको हसद नहीं होता, वो खुश होता है कि अच्छा मेरा स्टूडेंट है ये, बहुत खुश होता है। एक उस्ताद बच्चों से बहुत अपने स्टूडेंट से प्यार करता है, और दूसरे वालदैन। कहते हैं अब्बा जान, कहते हैं कि हमारे फौज में, अब्बा जान भी जैसे एयरफोर्स में, तो कहते हैं एक आदमी ने एक दफ़ा वाक्या सुनाया उनके दोस्तों में से, कहने लगे कि जिंदगी में मैंने बड़े सलूट किए हैं पर एक सलूट जो मैंने किया है ना जिंदगी में वैसा सलूट किया नहीं और वैसा मज़ा आया नहीं। कहा कि मैं एक पुलिस मैन ही था सारी जिंदगी, वो जो आप अगर एयरफोर्स के कैंप वगैरह देखे ना जहाँ एयरफोर्स के लोग रहते हैं तो एक बाहर हेडक्वार्टर सा बना होता है, उसमें से लोग जो है वो पूरी, जैसे आजकल यहाँ पे भी बना हुआ है बहुत सी जगहों पे, तो लोग जो है जब उसमें से गुजरते हैं तो उनकी आईडी उनका, और फिर वो जो पुलिस के जब पुलिस की गाड़ी अगर किसी अफसर की गुजरती है, यानी एयरफोर्स के अफसर की या आर्मी के अफसर की, तो किसी की भी नेवी का अफसर है तो उनकी जब गाड़ियां गुजरती हैं तो जो वहां पे पुलिस के आदमी या ड्यूटी पे होते हैं ना वो पूरा जैसे टेंशन होकर उनको सलूट पेश करते हैं। तो कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी मेरी लोगों को सलूट करते हुए गुजर गए क्योंकि मेरी वहां ड्यूटी लगती थी। कहते हैं फिर एक दिन मेरा बेटा कमीशन लेकर आया, जब उसकी गाड़ी गुजरी और मैंने उसको सलूट किया तो हजरत मैंने ऐसा सलूट मैंने जिंदगी में नहीं किया। कितनी खूबसूरत बात है कि बच्चा अफसर बन गया, बाप अभी भी मजदूर है, वहां खड़ा सलूट पेश कर रहा है, सारी जिंदगी सलूट पेश करते गुजर गई। कहा कि ऐसे सलूट का मजा जो है ना मुझे कभी नहीं आया। तो मेरी प्यारी बहनों, ये है मेरे और आपके वालदैन। इब्ने फारिस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जमीन से जो चीज भी उड़ती है, जैसे लकड़ी जलती है ना, अगर जो उसमें धुआं निकलता है धुआं, तो अगर हम अपने मां बाप को जरा सी बात भी कहते हैं, उनका दिल दुखा देते हैं, तो ये उफ है। धुआं कितनी हकीर चीज है, लकड़ियां जल रही हैं धुआं निकल रहा है। और अगर हमने अपने वालदेन का दिल दुखाया, उनको कोई बात कह दी, इतनी हकीर जितना धुआं है, धुआं तो निकला, जरा सी देर में निकला और फिर हट गया, तो वालदेन का दिल दुखाना गुनाह कबीरा है। अगर ऊंट की लकड़ी जले तो उसमें से खुशबू निकले तो वो भी उफ है। और शेख अबू मंसूर लुगवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असल में क्या है कि मट्टी भी अगर किसी पर फिर उड़कर चली जाती है या इसी तरह बहुत हकीर सी चीज, उसको उफ कहा जाता है। और डांटने में क्या चीज आती है कि वालदेन के साथ ऊंची आवाज में बात करना, उनको बदतमीजी से पेश आना, हमारे चेहरे पर कराहत होने लगे, या ये कि हम अपने हाथों से फिर उनको मारने लगे, तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आती हैं। अच्छा, इसके साथ ही यानी मैं आपको और अपने सामने सहाबा की जिंदगी के कुछ वाकयात रखना चाहती हूँ, और वाकयात की फहरिस्त इतनी तवील है कि अगर मैं उसको बयान करूँ तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए टाइम नहीं है। तो इसमें जो है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो भी अपने वालदैन के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, और एक दफ़ा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो ने खाना काबा में इस्लाम की पहली तकरीर की थी तो मुशरिकी ने मक्का ने आपको जूतों से मारा था, उतबा बिन रबिया ने, तो आपका नाक कान चेहरा जख्मी हो गया, लहू लहान हो गया, आपको उठाकर लोग घर लाए, होश आने पर आपने सबसे पहले पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है। फिर उसके बाद जो है रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दारे अरकम में थे, आपकी वालदा चाहती थी होश में आए, कुछ खा लें, तो जब होश में आए तो सबसे पहले ये कि अल्लाह के नबी तो ठीक थे ना, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा था ना, और फिर कहा कि मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं जब तक कि मुझे प्यारे रसूल से ना मिलवाएं। फिर इनको उठाकर दारे अरकम में लेकर गए, वहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लिपट कर रोते रहे और जख्मी चेहरे को देखकर बहुत देर तक। फिर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्होंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बहुत प्यार कर रहे थे, कहा कि अल्लाह के नबी मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिए, या रसूलल्लाह मेरी माँ के हक में दुआ कीजिए, अल्लाह इनको भी इस्लाम की दौलत से नवाजे। तो उस वक्त प्यारे रसूल ने इनकी वालदा के लिए दुआ की और वो मुसलमान हो गई। तो क्या बात पता चलती है कि हमारे वालदैन अगर कोई वो गलत काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने विरासत की तकसीम नहीं की ठीक तरह, अगर वो बच्चों को सही हक नहीं दे रहे, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई गैर इस्लामी रवैया और तौर तरीक़ा है, तो मेरी और आपकी अताअत और मोहब्बत में ये चीज़ भी आती है कि हम अपने वालदैन को मोहब्बत प्यार से समझाएं कि देखें मामा ये ठीक नहीं है, आप भैया के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, आप उसके साथ ज़्यादा मामला कर रही हैं छोटे बेटे के साथ, या फलां बेटी, या आपने फलां से जो कता ताल्लुकी कर ली है इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, या आप फुफ्फो के साथ अच्छा मामला नहीं कर रही, या दादी जान जो है उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, कोई भी जो भी अपने माँ बाप के अंदर कोई भी छोटी मोटी कमी बेशी चीज़ नज़र आए तो मोहब्बत और शफ़क़त से उनको समझाना चाहिए, ये उनकी अताअत पे नहीं आता। और अगर कोई गैर मुस्लिम है, मेरी एक स्टूडेंट है अफशा ख्वाजा न्यूयॉर्क से, और रिवर्टेड मुस्लिम, नाजरा भी पढ़ती थी, तफसीर मुझसे पढ़ी, और माशाल्लाह बहुत नेक बच्ची है, तो कहती हैं बहुत रोती हैं जब उनको मौका मिलता है, कहती हैं आप दुआ करें कि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए क्योंकि अभी तक वो मुसलमान नहीं हुई। तो अपने वालदैन के लिए, उनकी नेकी के लिए मुझे और आपको जो है वो दुआ करना, ये मेरी और आपकी जो है वो जिम्मेदारी बनती है। और इसके साथ साथ जो चीज़ें मेरे और आपके लिए बहुत अहम है, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या आता है, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु की वालदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, और एक दिन उन्होंने अपनी वालदा को इस्लाम कबूल करने की जब दावत दी तो उन्होंने इनकार किया। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रोने लगे, फिर प्यारे रसूल के पास गए, कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी आप मेरी वालदा के लिए दुआ करें ताकि वो मुसलमान हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपने हाथ उठाए कि अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को जो है वो इस्लाम की तौफीक अता कर। कहते हैं जब मैं घर आया तो दरवाज़ा जो था ना वो बंद था और पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी जैसे, तो कहते हैं कि फिर जब वालदा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि नहाई हुई हैं, कपड़े पहने हुए हैं, तो कहा कि मैं मुझे मोहम्मद के पास ले चलो ताकि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। और उधर अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए और घर आए तो माँ ने इस्लाम कबूल भी, मतलब वो करना चाहती थी, नहा धो के तैयार थी। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु को भी अगर कोई गम था तो क्या था कि मेरी वालदा जो हैं वो इस्लाम कबूल कर ले। अच्छा, एक दफ़ा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बारे में फरमाया
کہ لوگوں میں اپنی ماں کے ساتھ اطاعت کرنے میں وہ سب سے بیسٹ ہیں. وکانا ابر الناسی بے امہ, کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے میں, حسن سلوک کرنے میں سب سے اچھے ہیں. اور یہ کون تھے؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سوئے, آپ کی آنکھ لگ گئی, آپ نے کہا کہ نم تو فارائیتنی فی الجنہ فسمے تو سوتا قاری, جب میں مجھے آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں کسی کی نے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے, میں نے فقلتو من ہاضا, تو لوگوں نے مطلب فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ کیسے تھے؟ حارثہ بن نعمان کذالک البر, نیکی اس کو کہتے ہیں. وکانا بر الناس بے امے, کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دو صحابی سارے صحابہ سے نیکی کرنے میں زیادہ تھے اپنی والدہ کے ساتھ, اور ان میں ایک حضرت عثمان کا نام لیا جاتا ہے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, اور دوسرے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی بھی مطلب میری ماں کیا چاہتی ہے, وہ کیا مجھے مطلب چاہتی ہے یا کس طرح وہ خوش رہ سکتی ہے, میں نے کبھی اس کے بارے میں مطلب میں نے دوبارہ کوسچن نہیں کیا, کبھی غور و فکر نہیں کیا, فوراً میں اس پہ عمل کرنے والا ہوں. اور حضرت حارثہ بن نعمان کے بارے میں نے یہ حدیث تو بہت دنوں سے سنی ہوئی تھی, پھر میں نے اس کو بہت سرچ کیا کہ کیا چیز تھی کہ جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ جو تھے وہ حسن سلوک کرنے میں سب سے زیادہ اچھے تھے. تو وہ اپنی والدہ کے جو سر تھا نا, جیسے اس کو صاف کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس کو دھونا وغیرہ, اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتے تھے, اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ اگر کوئی بات کہتی تھی نا اور مجھے سمجھ نہیں اگر آئی تو میں ان سے کوئی سوال آگے نہیں پوچھتا تھا, میں کوشش کرتا تھا, یعنی میں ان کی بات کو کاٹوں نہیں, یعنی میں اس کو سمجھوں. ماذا قالت امی, کہ میری ماں نے کیا کہا, تو میں کوشش کرتا تھا کہ ویسے ہی مجھے سمجھ آئے. اتنا ادب اور اتنا احترام, اور ہمارے ماں باپ کے ساتھ میں اور آپ کتنا اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, کتنا ان کا دل دکھاتے ہیں, اور کتنا ان کے ساتھ جو ہے برا معاملہ کرتے ہیں. ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں سے بات کرتے تھے نا ایسے لگتا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں. اپنی ماں ان کی مدینہ کے رہنے والی والدہ تھی, بہت نفیس, جیسے کچھ علاقوں کے لوگ بہت نفاست, ادب آداب, اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے لیے کپڑے رنگتے تھے, جب کپڑا لاتے تھے تو دیکھتے تھے نرم ہو, ہلکا ہو, ملائم ہو. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ. اور ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جب میں نے ان کو اپنی والدہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سرگوشی کر رہے ہیں, اونچی آواز میں وہ بات بھی نہیں کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے سامنے کھانا نہیں کھاتے تھے, کہ کہیں جب میں کھانا کھاؤں تو میرا ہاتھ جو ہے ان تسبق یدہ الی ما سبقت الیہ عین امی, کہ اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کا ہاتھ, اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ زیادہ بدتمیزی نہ کر جائے کھانا کھانے میں, یعنی میں ادب سے کھانا کھاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ماں جیسے کھانا کھاتے ہوئے میں ان کے آگے سے چیز اٹھا لوں یا کچھ بھی ایسے کر لوں, کہ یعنی اتنا ادب اور اتنا احترام. اب مجھے آپ بتائیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ابو الحسن علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے, کانا من سادات التابعین, کہ وکانا کثیر البر بامہ, کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے. حتی قیلا, حتی کہ یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے انکا من ابر الناس بامہ, کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے اچھے تھے. اور کہتے ہیں ولسنا نراک تاکل ماہ فی صفا, اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہوں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ میں, تاکہ یعنی ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے ماں کے آگے سے کوئی ایسی چیز نہ اٹھا لے اس کی پلیٹ میں سے جو انہوں نے خود کھانی تھی. ہماری ماں کہتی ہے کہ اچھا, میں کہتی ہوں کہ ماما مجھے جو ہے نا آپ کو آم بہت پسند ہے نا, میں نے اپنے حصے کا کھا لیا. ماں سے پوچھتے ہیں امی اور آم ہے, وہ کہتی ہیں ہاں ہے تو سی پر میرے حصے کا ہے. میں کہتی ہوں اچھا امی وہ بھی مجھے دے دیں. آپا نے چھوٹی آپی نے کپڑے لا کر دیے, بہت اچھا جوڑا ہے, امی کو لا کے دیے. میں کہتی ہوں امی مجھے بہت پسند آیا. امی کہتی ہیں اچھا لے لو. میں ان کا جو دوسرے بھی ان کو دیتے ہیں نا, امی یہ کڑی, یہ جو انگوٹھی ہے نا یہ مجھے ہی آپ نے دینی ہے, یہ جو کڑے ہیں نا جو پہنے ہوئے انہوں نے یہ مجھے آپ نے دینا ہے, یہ جو جگہ ہے یہ چیز جو ہے نا مجھے آپ نے دینی ہے. ان کی چیزوں پہ نظر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ان کو دیں اور پھر بھول جائیں کہ امی آپ جس کو چاہے جو ہے وہ دیں. امی آپ کسی کو صدقہ خیرات دینا چاہتی ہیں, یہ لیں امی یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, جس کو چاہے آپ دے دیں. امی میں نے آپ کو کپڑے دیے نا, آپ جس کو چاہے صدقہ خیرات کر دیں. ہم کہتے ہیں ہمارا دیا ہوا کیوں دیا, ماں کی مرضی جہاں چاہے دے دے. امی آپ, میں چھٹی جاؤں, امی آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں, امی آپ کی کون سی دوست ہے جن کو آپ مس کرتی ہیں. اچھا آج میں گھر میں دعوت کروں گی, اپنی امی کی سب سہیلیوں کو بلواؤں گی تاکہ میری امی ان سے باتیں کرے. آج میں دعوت کروں گی, اپنے ابو کے سب دوستوں کو بلاؤں گی. تو اس لیے بہن بھائیوں کو بلانا کہ امی ان کو ملیں گی, ابو ان کو ملیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ وہ مس کرتے ہیں. اور میں یعنی یہ جو وفا کی کہانیاں ہیں صحابہ صحابیات کی بے شمار ہیں, لیکن ایک کہانی پر میں آج اپنی اس بات کو ختم کرتی ہوں. اور وہ کہانی ہے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی انہوں نے اطاعت کی, انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی, وہ مثال قائم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر التابعین کا ٹائٹل دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ خیر التابعین کسے کہتے ہیں, کہ جو صحابی تو نہیں تھا لیکن اس نے صحابی سے ملاقات کی تھی. وہ صحابی تو نہیں تھا, اس نے صحابی سے ملاقات کی تھی. اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ, اویس بن عامر, ان کی کنیت تھی ابو عمر, حج نہیں کیا تھا اور صحابی بننے سے محروم ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا, مسلمان ہو گئے, ملنے کا بہت شوق تھا اور انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں جا کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل آؤں. کہا کہ مل آنا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے آ جانا. بہت مطلب سفر کر کے گئے, جو بھی جس بھی مشکل سے پہنچے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے اور یعنی انتظار نہیں کیا, واپس چلے گئے. ویسے ہی واپس چلے گئے ملے بغیر, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے ہی نہیں اور واپس چلے گئے. تو اس طرح آپ صحابی نہ بن سکے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا, یہ تابعین کے امام تھے. آپ سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا اویس کون ہے, فرمایا اس کا قد درمیانہ, اس کا سینہ چوڑا, رنگ شدید گندمی, داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی, اس کی نگاہیں جھکی ہوئی, اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی جب تلاوت کرتا ہے تو زارو قطار روتا ہے. سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھ کے اس کے پاس دو چادریں ہیں, ایک بچھاتا ہے اور ایک اوڑھ لیتا ہے. دنیا والوں میں گمنام ہے, دنیا نہیں اس کو جانتی لیکن آسمانوں میں اس کا بڑا چرچا ہے. دنیا والوں میں گمنام ہے, آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے. اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا. اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے. کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ, لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور تو دوسروں کی سفارش کر, اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. فرمایا وہ قبیلہ ربیعہ اور مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہوں کی سفارش کرے گا. یہ دو قبیلے تھے, کہا کہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کے لوگ جتنے ہیں نا, جتنی ان کی تعداد ہے اتنے لوگوں کی سفارش کرنے کی اس کو اجازت دی جائے گی. اور آپ نے کہا تھا اے عمر, اگر ہو سکے تو تم اویس کرنی سے دعائے مغفرت ضرور کروا لینا کہ جب وہ اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. تو میری پیاری بہنوں, میں اور آپ جو ہیں اس وقت میرے اور آپ کا آج عمل کا اصول کیا ہے، مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے، یہ بات بہت اہم ہے. اور میں آپ سے پوچھتی ہوں اور میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتی ہوں. تو پہلا میرا سوال ہے کہ دنیا ہی میں کسی کے احسان کا بدلہ کون دینا چاہتا ہے؟ دنیا میں ہی کسی کے احسان کا بدلہ کون کون دینا چاہتا ہے؟ جواب نہیں دے، ہاتھ کھڑا کرے، کون کون دینا چاہتا ہے؟ آپ یہ بولیں کہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ہی میں کسی کے احسان کا بدلہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ کون ہے؟ آپ سب بتائیں، سب بولیں کہ میں. آپ اپنے بارے میں، کون دنیا میں کسی کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ بہت اونچی آواز میں زور سے بولیں، میں دینا چاہتی ہوں. اور احسان کا بدلہ دینے کا جو ہے ایک طریقہ جو قرآن نے بتایا وہ کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن میں والدین کے لیے جتنی دعائیں آئی ہیں وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. آپ کو کتنی دعائیں آتی ہیں جو والدین کے لیے مانگنی ہیں؟ ایک تو یہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پہ زندگی گزار دی، دوسری بات یہ دو دعائیں آتی ہیں کتنی مانگتے ہیں میں اور آپ. نماز کے اندر بھی ہم ان دعاؤں کو شامل کر سکتے ہیں، پھر بھولے گی نہیں. ہاں تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ بعد میں بات ہوتی ہے. تو دنیا میں احسان کا بدلہ دینے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ مسلسل ان کے لیے دعا کرنا، اور باقی جو ہم نے دیکھا ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب، ان کی عزت، ان کی تعریف، ان کی دل جوئی، ان کی جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں. نمبر ٹو میرا سوال ہے، جنت میں قرآن کی تلاوت کون کرنا چاہتا ہے؟ اونچا بولے سب، میں. ہاتھ بھی کھڑا کرے اور اونچا بولے، کون کون کرنا چاہتا ہے؟ میں کرنا چاہتی ہوں. تو کیا کرنا ہے؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی طرح کہ انہوں نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیسٹ ہے احسان کے درجے کی نیکی کرنے والے. اور میرے اور آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے کا جو اس کی بریانی بیسٹ ہے، وہ گاڑی بیسٹ چلاتی ہے، اس کے گھر کی ڈیکوریشن بیسٹ ہے، اس کا زیور بیسٹ ہے، اس کی آنکھیں بہت بیوٹیفل ہیں، وہ بہت حسین ہیں. اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے مجھے خوبصورت بنا دیا، اللہ نے عقل دی تو کھانا اچھا پکاتی ہوں، اللہ نے ذہین بنایا تو گاڑی بڑی اچھی بناتی ہوں. اللہ نے یہ سب کچھ مجھے دیا نا، اور اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. لیکن اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ میں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اچھا، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اس کو دراز زندگی ملے، لمبی عمر ملے؟ پھر سب مل کر بولیں، سوچ لیں، سوچ لیں. چاہتے ہیں کہ آپ کو لمبی عمر ملے؟ کون کون چاہتا ہے؟ کچھ لوگ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہیں. کون کون چاہتا ہے کہ لمبی عمر ملے؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو. ٹھیک ہے، دوسرا سوال اسی کے اندر آتا ہے، کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلا رزق ہو؟ اچھا، یہ سب چاہتے ہیں. چلیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ منع نہیں ہے حلال طریقے سے ملے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کھلا ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. تو والدین کے ساتھ صلہ رحمی، رزق میں اضافہ، بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر کسی بیٹی یا بیٹے کی جاب نہیں ہے، تھی تو ختم ہو گئی، کہیں انہوں نے والدین کو ناراض تو نہیں کیا ہوا؟ کہیں والدین کی بد دعائیں تو نہیں کوئی لگ رہی ان کو؟ اگر آپ کا کام خراب ہو رہا ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، الٹی چیزیں ہو رہی ہیں، جو چاہ رہی ہوں وہ نہیں ہو رہا، مسائل آ رہے ہیں، پریشانی آ رہے ہیں، تو پتا کرے کہ ماں ہے گھر میں، ماں زندہ ہے دنیا میں، باپ زندہ ہے دنیا میں، میرا یا میرے شوہر کا، اور ان کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں. کوئی گناہ ہو گیا، کون کون چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے؟ کون کون یہ چاہتا ہے؟ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو راضی کریں.
والدین کسی کو بد دعا نہیں دیتے،
لیکن ہاں یعنی وہ دیتے نہیں، لیکن جب اولاد بہت تنگ کرتی ہے تو زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے. بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ ماں جو تھی اسے ناراض تھی، بد دعا دی تھی تو اس کی روح نہیں نکل رہی تھی. ہر دور میں ایسا ہوا ہے. تو اپنے ایک آدمی سے گناہ ہو گیا تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے تو گناہ ہو گیا، میں عورت کے ساتھ یہ کیا. کہ تو آپ نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں. کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں, کہا جا اس کے پاس صلہ رحمی کر. تو میری پیاری بہنوں, اگر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اگر چاہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں, اگر چاہتے ہیں کہ رزق ملے اور کثیر تعداد میں ملے, تو آئیے اپنے والدین کو راضی کریں تاکہ میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے خوش ہو جائے, اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور اپنی جنت ارن کریں, جنت کمائیں, جنت کمائیں. والدین کے ساتھ گلا شکوا کرنا, ان کو ناراض کرنا, ان کی جائز خواہشات کو پورا کریں, اور ان کو جو ہے یعنی جو کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹائم میرے اور آپ کے پاس بہت تھوڑا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں, وہ کیا کریں؟ نمبر ایک, حدیث سے پتہ چلتا ہے دعائے مغفرت مسلسل ہم کریں. نمبر دو, جو ددھیال ننہیال کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. نمبر تین, ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں, جو اچھا کام کرتے تھے اس کو جاری رکھیں. نمبر چار, ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بدو کو دیکھا کہ آپ سواری پر جا رہے تھے, اترے, نیچے اترے اور اس کو اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی, اور اس کا بہت عزت محبت سے اس کو ملے. تو ساتھ والے نے کہا آپ اس کو ایک دینار دے دیتے وہ خوش ہو جاتا, آپ نے پگڑی اتار کر دے دی. کہا کہ یہ میرے عمر والد کو ملنے آیا کرتے تھے, یہ بدو تھے میرے والد کے پاس آیا کرتے تھے. ہمارے تو والدین ختم, تو ہمارے ان کے دوستوں کے ساتھ رشتے ختم. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا کرے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اوزنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے ہمارے رب, ہمارے والدین پر, جو بھی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے بھائی اور کل مومن مومنات, سب کے والدین پر رحم فرما. جو دنیا میں ہیں, زندہ ہیں, ان کی بیماری جو ہے اس کو ختم کر دے, ان کو ان کے لیے آسانی کر دے, ان کی تنہائیوں کا وارث بن جا, ان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو, انہیں گرم ہوا بھی نہ لگے. اے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے, تو ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہمارے والدین پر رحم کر. اے ہمارے رب, ہم آپ کی سکھائی ہوئی دعا پڑھتے ہیں, وہ دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی, رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی, کہ تو نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں, جو مجھ پر تیری نعمتوں کی بارش ہے, میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں. اور اے اللہ, مجھے توفیق دینا کہ جو میرے والدین پر تیری بلیسنگ ہوتی رہی اور جو تیری انعامات کی بارش ہوئی, میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں. اے اللہ, تو نے یہ بھی کہا کہ اپنے والدین کی نعمتوں کا بھی میں شکر ادا کروں, تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرنا. اے ہمارے رب, تو ہمیں مستجاب دعوات بنا دے, جیسے کہ اویس کرنی تھے اپنے والدین کی خدمت کے ذریعے سے. اے ہمارے رب, تو ہمارے والدین, ہمیں توفیق نہ دینا اس بات کی کہ ہمارے والدین جو ہیں ہم ان کی خدمت نہ کر سکیں. اگر ان کی خدمت میں, ان کا خیال رکھنے میں ہم سے کچھ بھول ہو گئی, کوئی گستاخی ہو گئی, تو آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اور ہماری جنت جو دنیا میں ہے, آج ہمارے گھروں میں ہے, ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنی جنت کی قدردانی کریں. اپنے والد, اپنی والدہ, ان کی عزت, ان سے محبت, ان سے پیار, اگر ان سے دنیا کی زندگی میں, لین دین میں, کسی چیز میں کچھ کمی بیشی ہو گئی, ہمارے دلوں کو اتنا بڑا کر دے کہ ہم انہیں معاف کر دے, اور ہمیں توفیق عطا کر کے ہم انہیں معاف کر دے. جو دنیا سے چلے گئے اور جو دنیا میں موجود ہیں, اے ہمارے رب, ہمارے والدین, ہم سب اور جو دنیا سے چلے گئے, کل مومن مومنات, سب کی مغفرت کر دے. اور کچھ بہنوں نے خاص طور پر صحت کے لیے اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے اور صحت کی دعا مانگی ہے, اسی طرح کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مغفرت کی بھی دعا مانگی ہے, اور وہ دعا قبولیت کا زیادہ درجہ پاتی ہے جس میں خاص کی بجائے اس کو عام کر دیا جائے. یعنی عام طور پہ اس کو سب کے لیے اس میں شامل کیا جائے, اور جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم یہ دعا کرتے ہیں, یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو آج آنا چاہتے تھے اور آ نہ سکے, جو ابھی سن, جنہوں نے ابھی سنا, جو آئندہ سنیں گے, ان دعاؤں میں ان سب کو شامل کر لینا. ہم سب کو اپنا مطیع بنا, ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا, اور جو کہا اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کر. ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے. اے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے اے رحیم اور کریم آقا, یا خالقو یا مالکو یا اللہ, ہماری جو بہنیں یہاں پہ آئی ہیں, اور ہماری وہ بہن جس نے یہ دسترخوان سجایا ہے اور یہ دریاں بچھائی ہیں اور لوگوں کو دعوت دی ہے, اور اس میں جس جس نے حصہ ڈالا ہے, کسی نے کسی کو رائڈ دی, کسی نے کسی کو بلایا, کسی نے بتایا, کسی نے فلائر بنایا, کسی نے اس کو آگے بھیجا, کسی نے اس کی پلاننگ کی, اس نیکی کی شمع روشن کرنے میں جس جس کا حصہ ہے, اے ہمارے رب ان کو اس کا بہترین اجر دینا, اور آج کی محفل کو ان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بنا دینا, اور ان کے لیے جو ہے نیکی کا بہتا ہوا سمندر بنا دینا. تو جو لوگ بھی نیکی کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, اے ہمارے رب ان کی نیکیوں کو, ان کے اچھے کام کو قبول کر لے. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز, بے روزگاروں کو روزگار دے, جن کو رزق دیا ہے اس میں وسعت عطا کر. گھروں میں بچے ہیں, جوان بیٹیاں بیٹے, اچھے رشتے دے. جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کو کامیاب کر دے. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے نکال. جن کی جاب ختم ہو گئی ہے اور ہوئی ہے, اور جو پہلے سے جن کی ختم ہوئی تھی اور جن کی ابھی ختم ہوئی ہے, اے وہ رب جو چڑیا خالی پیٹ گھر سے جاتی ہے اور شام کو آتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اے ہمارے رب غیب سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. ایک دروازہ بند ہوا ہے, جاب ختم ہوئی ہے, تو تو اندیکھے سینکڑوں دروازے کھول دے کہ ان کے لیے جو ہے وہ رزق کا کمانا آسان ہو جائے, وہ اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی اچھی کفالت کر سکیں. ماں باپ پریشان ہے کہ بچوں کے پاس جاب نہیں ہے, تو ماں باپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو ایک ماں جو دکھی ماں ہے اور رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کو جاب مل جائے, میری بیٹی کو جاب مل جائے, باپ رو رہا ہے کہ میری اولاد جو ہے پڑھائی کی ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, جاب مل جائے, تو رزق حلال کے دروازے امت مسلمہ کے لیے کھول دے, غیب سے ان کے لیے انتظام کر دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا کر. ہم میں سے ہر ایک کی نیک اور جائز خواہش کو قبول کر لے. جو شادیاں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, ان کو کامیاب کر. جن کے جو گھر ہیں, گھروں میں محبت عطا کر. اور جن کے بوڑھے والدین ہیں گھروں میں, اپنے یا شوہر کے, ان کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دے. آسان کر دے جنت کا کمانا. والدین کی بیماری, والدین کی تکلیف, ان کا بڑھاپا, یا ان کا جو بھی ان کے مسائل ہیں, وہ ایسے نہ کرنا کہ لا یکلف اللہ نفسا وسعہا, ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں. تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ سعادت دے کہ ہمیں اپنے والدین کو خدمت کریں اور پھر جنت کمانے والے بن جائیں. اویس قرنی, حارثہ بن نعمان اور حضرت عثمان بن عفان اور دیگر صحابہ صحابیات کی طرح, وبالوالدین احسانہ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہم سب کو اس کی عملی تصویر بنا دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.